या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कृष्ण से कृष्ण के बाले काले की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना अगासुर शक्टासुर तृणावरत वध को कविता में ढाल लिया था और दही मत्ते समय वो कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 2400 घंटे कृष्ण भानाभित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज और कल इस 10वें स्कंद के 9वें अध्याय से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल और परसों दोनों दिन दिवाली मनाई जा रही है और दिवाली के दिन ही बहुत सुंदर और मधुर लीला होती है। भगवान को यशोदा मैया उखल से बांध देती है। वैसे तो छोटी सी बात है, माँ अपने बच्चे को कभी बांध देती है, मारती भी है, डांटती भी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ हुई है तो बहुत बड़ी बात है, उसका भागवतम में वर्णन है। और भगवान के इस बाल लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ती है, भौतिक आसक्तियाँ कम होती हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं सब भक्तों इकट्ठे बैठ के जब भगवान के चरित्र का वर्णन सुनते हैं तो भक्तों में भी प्रेम में संबंध स्थापित होता है। और विशेषकर कार्तिक मास में श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन का और भी अधिक महत्व है। पता है कार्तिक में भगवान की लीलाओं को सुनने से, भागवतम को सुनने से पूरे 18 पुराणों को सुनने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और आप भगवद गीता भागवतम के 1/4 श्लोक भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो 100 गायें दान करने का फल मिल जाता है। तो आज 2 श्लोक पढ़ लिए। तो इसलिए बहुत शुभ है कार्तिक का मास और हम सब के लिए बहुत ही हृदय को पवित्र करने वाला है। तो जो ये लीला है ये व्रज में गोकुल की बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य बताते हैं कि भगवत्ता के 2 पहलू हैं, एक माधुर्य और दूसरा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य प्रदान भक्ति भगवान की वैकुंठ लोकों में होती है आदर सत्कार के साथ, लेकिन माधुर्य प्रधान भक्ति भगवान की व्रज में होती है। और ऐसा माधुर्य भगवान को व्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के पहाड़ के नीचे भगवान के ऐश्वर्य छिप जाते हैं। भगवान अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति व्रज में ही करते हैं। पूर्णतम अभिव्यक्ति का अर्थ है कि भगवान का माधुर्य और भगवान का ऐश्वर्य अपनी चरम सीमा पे होता है व्रज में। द्वारका में भी ऐश्वर्य है, मथुरा में भी ऐश्वर्य है, लेकिन द्वारका और मथुरा में जो ऐश्वर्य है वो भगवान के माधुर्य को संकुचित कर देता है, शिथिल कर देता है। देवकी और वसुदेव जान गए कि ये भगवान है, तो जब भगवान प्रकट हुए कारागार में तो बहुत सी स्तुतियां की, उनको स्तनपान नहीं कराया, तो स्तुतियां की। बाद में जब कंस का वध करते हैं तो बड़े डरे हुए थे, देखो इतना बड़े महान व्यक्ति है, मैं तो स्वयं भगवान है, तो उनका जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है। अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो सारी वो मित्रता भूल गए, तरह तरह से प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन ब्रज में ने भी भगवान ने बहुत ऐश्वर्य दिखाया, 6 दिन के ही थे, पूतना का वध कर दिया बिना सुदर्शन चक्र के, त्रिनावत का वध कर दिया बिना अस्त्र शस्त्र के ऐसे, और अरिष्टासुर है उसको उठा के ऐसे फेंक दिया। ये भगवान का ऐश्वर्य था। लेकिन ब्रज के जो ऐश्वर्य होते हैं उसकी ये खूबी है कि वो जितना वो भगवान ऐश्वर्य दिखाते थे ब्रजवासियों का माधुर्य और बढ़ जाता था। अरे कितना चमत्कारी वाला क्या है, और कितना चमत्कारी वाला क्या है, तो हमारा ही बच्चा, अरे वाह कितना चमत्कारी, और प्रेम बढ़ जाता था। तो ऐसे ही चमत्कारी लीला यहाँ पे की उन्होंने। और कई बार भगवान दिखाना भी चाहते थे कि मैं भगवान हूं, तो मानते नहीं थे वो। भगवान कृष्ण बलराम जाते थे वन में बाल बालों के साथ, तो कुश्ती खेलते थे, तो पेयर में डालते कौन किसके साथ कुश्ती खेलेगा, तो कृष्ण श्रीधाम के साथ कुश्ती लड़ने वाले हैं। तो कुश्ती लड़ने से पहले हर व्यक्ति एक दूसरे को थोड़ा नीचा करने के लिए कुछ जो साहसी शब्द बोलते हैं, तो कृष्ण ने श्रीधाम को थोड़ा नीचे दिखाने के लिए, धमकाने के लिए बोला, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो श्रीधाम ने बोला, पूरी सृष्टि में सबसे अच्छा जो कोई तुमको जानते है वो मैं ही हूं। तो बोले, तुम क्या जानते हो मैं कौन हूं, बोले बताओ फिर कौन हो तुम, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं। बोले वह परम पुरुषोत्तम भगवान, ऐसे हंसने लगे सब जोर जोर से। भगवान को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे बताओ कैसे भगवान है तू, बता दो से। तो बोले मैं भगवान हूं, मैं जब 6 दिन का था मैंने पूतना का वध किया, मैंने अगासुर का वध किया, मैंने गोवर्धन को भी हटाया उठाया। अब ये जब सुना तो सबके सब लोटपोट होने लगे, जमीन पर लौटने लगे, इतना जोर जोर से हंसे। बोले कृष्ण बहुत गलत फहमी है तेरा। खूब जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण को बड़ा मान ही नहीं रहे, बोले अच्छा आज तुम्हारी गलत फहमियां दूर कर देते हैं, है ना, तुमने पूतना को मारा है। फिर हंसने लगे, बताऊं कैसे पूतना कैसे मेरी मालूम है, वो तो यशोदा जी ने कई ब्राह्मणों को बोला वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, ये तो ब्राह्मणों का तेज था, तुम तो दूध पी रहे थे, तुम्हें क्या मालूम, ब्राह्मणों के तेज से पूतना का वध हुआ, बोले तुमने मारा। खूब हंसने लगे। अच्छा अगासुर का, अगासुर के मुख में पहले कौन घुसा था, है हम घुसे थे पहले, हमने घुस के पहले उसको मार दिया, तुम बाद में आए करेट ले रहे हो सारा। और फिर गोवर्धन, अच्छा गोवर्धन तुमने उठाया, गोवर्धन का पूजा किया, यज्ञ किया, गोवर्धन इतने भावावेश में आ गया हवा में उड़ने लगा, तुमने जाके नीचे उंगली लगा दी। अरे कृष्ण कुछ तो समझो है, भगवान को बहुत अंदर से बहुत आनंद आ रहा था, ऊपर से क्रोध दिखा रहे थे। तो ऐसे अगर भगवान बोलते भी थे मैं भगवान हूं तो मानते नहीं थे, और उससे व्रजवासियों का भी प्रेम बढ़ता था और कृष्ण का भी प्रेम बढ़ता था। ये इतनी मधुरता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैला प्रचार, भगवत्ता का सार है माधुर्य, और इसमें कृष्ण ने ब्रज में इसका प्रचार किया। अगर भगवान यशोदा से उखल में ना बांधते, भगवान क्यों बंधे, भगवान ये दिखाने के लिए बंधे हम सब भक्तों को कि तुम भी मुझे बांध सकते हो, बस मुझसे प्रेम करना सीख लो, है ना। अगर भगवान अपने ये भक्त वशता ना दिखाते, भक्त वसलता ना दिखाते, तो हम लोग ऐसे बैठ के थोड़ी उनका गुणगान कर रहे होते। हमारी भक्ति को उत्साहित करने के लिए, हमें कृष्ण से अपने से प्रेम करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं रचते हैं और अपना भी आनंद बढ़ाते हैं। तो ये जो दामोदर लीला है इसमें एक ही साथ भगवान ने 5 रसों का आस्वादन किया। ऐसी बहुत सी कम लीलाएं हैं जिसमें भगवान ने एक साथ 5 रसों का आस्वादन किया। कौन सी ऐसी लीला है, और गोवर्धन लीला, और इसमें भी देखते हैं कैसे 5 रस आते हैं। वैसे सबसे प्रमुख तो इसमें वात्सल्य रस ही है, यशोदा मैया और कृष्ण का, और इसमें दास्य रस में भी है, दासी रस में कौन होगा इसमें? उखल रस्सी और वो दूध जो नीचे गिरा वो दास्य रस में है, और उसके बाद क्या है? साखे रस, शांत रस में, सॉरी शांत रस में आपके रस्सी है, उखल है, और शांत रस के बाद फिर दास्य रस है, दास रस के बाद साखे रस है। साखे रस में कौन है? बानर लोग, भगवान के मित्र बने उस बारी। और वात्सल्य रस में यशोदा मैया, और माधुर्य रस में सनातन गोस्वामी जी के अनुसार इसमें राधा रानी भी आती हैं, अंत में लीला में बताएंगे। तो पांचों रस इसमें हैं। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही साथ एक ही स्थान में पांचों रसों का आस्वादन कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है ना। साधारण व्यक्ति के लिए हम घर घर में कहानियां होती हैं, एक तरफ माँ है एक तरफ पत्नी है, माधुर्य श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का विकृत रूप। क्या हालत होती है व्यक्ति की, इस तरफ झुकता तो वहां पिटाई, वहां झुकता तो यहां पिटाई, और बीच में वात्सल्य भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, फिर किसको संभाले, समझ नहीं आता उसको, है ना। और ऊपर बॉस है वो दास्य रस वहां पे। तो बुरी हालत है। लेकिन कृष्ण ही है पांचों रसों का भरपूर आस्वादन, सबको संतुष्ट, एक ही साथ एक ही स्थान में एक ही समय। और ये जो दामोदर लीला है इसमें भगवान के पांच मुख्य गुण निकल के आते हैं। भगवान की महानता, भगवान की मधुरता, भगवान की ममता, भगवान की दीन वत्सलता। नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे अपराधियों को भी भगवान ने उनका उद्धार किया, इस सुंदर लीला में उनको भाग लेने का अवसर दिया। और पांचवा भगवान की भक्त व्यवहारिता, कैसे भगवान ने नारद मुनि के वचनों को सत्य साबित किया। तो ये पांच मुख्य गुण भगवान के निकल के आते हैं। और ये जो दामोदर लीला है, भगवान अपनी हर लीला का मंचन अपने आनंद के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इस दामोदर लीला के मुख्य उद्देश्य भी हैं। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सच की जय। तीन मुख्य कारण इस दामोदर लीला को करने के भगवान के। सबसे पहला कारण इसमें वो यशोदा मैया के यश को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। इस श्लोक में आता है एकदा गृह दासेषु यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। क्या मेरा ऐसा प्रेमी भक्त है जो मुझे रस्सी से भी बांध दे, मैं बिल्कुल असीमित हूं। किसको बांधा जा सकता है? एक सीमित वस्तु को बांधा जा सकता है। भगवान सर्वव्यापक है, कैसे बांधा जा सकता है भगवान को? लेकिन मेरे भक्त में इतना प्रेम है कि मैं उससे प्रेम से बंध जाता हूं। तो यशोदा मैया का गुणगान करने के लिए, यशोदा, यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो यश प्रदान करे, यशदा, यशोदा। किसको यश प्रदान कर रही है? कृष्ण को यश प्रदान कर रही है। क्या यश प्रदान कर रही है कृष्ण को? कि कृष्ण भगवान होते हुए भी एक भक्त के हाथ से बंध गए। मायावादी हैं, निराकारी हैं, योगी हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान में लीन होना चाहते हैं, शून्य बनना चाहते हैं। प्रभुपाद बताते हैं भक्तों का इतना भगवान उत्साह बढ़ाते हैं कि भक्त तो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। तो भगवान का यह यश है, यशोदा मैया भगवान का यश बढ़ा रही है कि वो भगवान होते हुए, परमेश्वर होते हुए भी प्रेम से बन जाते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। तो यशोदा मैया कृष्ण का यश बढ़ा रही हैं, कृष्ण यशोदा का अपने भक्त का यश बढ़ा रहे हैं। भक्त हमेशा आतुर रहते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, और भगवान भी उससे ज्यादा आतुर रहते हैं भक्त का गुणगान करने के लिए। और भक्तों में और भगवान में स्पर्धा हमेशा चलती रहती है। बहुत सुंदर इससे हम सिद्धांत देख सकते हैं। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं भगवान को देकर। अगर हम सुंदर बनना चाहते हैं तो भगवान का श्रृंगार करें। शीला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो वहां के हिप्पी लोग कैसे गंदे रहते थे, बड़े बड़े बाल, मुरझाए हुए चेहरे, गंदे, अस्वच्छ। और जैसे ही वो भगवान की सेवा में जुड़े कितने सुंदर हो गए। प्रभुपाद कहते थे जस्ट कमिंग फ्रॉम वैकुंठ, वैकुंठ मैन। इसी ढंग से हम भी देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले अपना चेहरा देखें, आने के बाद देखें, काया कलप, है ना। है ना, दिखाते हैं कायाकल्प हो रही है, हम भी देख सकते हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, हमारा भी गुणगान होना शुरू होता है। एक बार गिरिराज महाराज जी ने सतरूप महाराज जी को चिट्ठी लिखी, 1985 या 86 की बात है, और उस पत्र में लिखा कि इस्कॉन के इस आंदोलन क्यों बढ़ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बढ़ रहा है। प्रभुपाद तो चले गए, हम लोग तो मलेच्छ हैं, हमें ऐसी क्या योग्यता है कि कृष्णा भावनित आंदोलन पूरे विश्व में फैल रहा है, हम नहीं फैला रहे उसको, निश्चित रूप से कृष्ण इसका प्रचार कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे, कृष्ण इसका प्रचार क्यों करेंगे? हाँ, कृष्ण इसका प्रचार इसलिए करेंगे क्योंकि कृष्ण प्रभुपाद का गुणगान करना चाहते हैं। अरे कृष्ण प्रभुपाद का गुणगान क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि प्रभुपाद के जीवन केवल एक ही इच्छा रही है, हमेशा कृष्ण का गुणगान कर। तो प्रभुपाद ने केवल कृष्ण का गुणगान किया तो कृष्ण भी प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं। एवे यश गिशुक त्रिभुवन, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रभुपाद का गुणगान हो रहा होगा, कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप, तो भगवान की इच्छा है। इसी प्रकार से जो हम भगवान को देते हैं, भगवान वापस देते हैं। वैसे भी सृष्टि का नियम है, नो यू रीप व्हाट यू सो, जैसे हम करते हैं वही वापस आ जाता है। लेकिन भगवान के साथ करते हैं तो भगवान तो असीमित हैं, और भगवान तो बहुत कृतज्ञ हैं। सुदामा ने उनको थोड़े से चिड़वा दिया सूखा, भगवान ने क्या दे दिया? द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के थोड़ा सा वस्त्र दिया, भगवान पूरी साड़ी बन गए। तो भगवान का थोड़ा सा कम भी कम बहुत असीमित होता है। तो अगर हम सब प्रेम के भूखे हैं, आनंद के भूखे हैं, अगर हम भगवान को प्रेम देंगे, भगवान को आनंद देंगे, तो भगवान हमें अपना अपार प्रेम और अपार आनंद देंगे। तो यशोदा यश मैया ने कृष्ण का गुणगान किया, यश दिया, और कृष्ण ने यशोदा का गुणगान। तो पहला कारण दामोदर लीला का, अपने भक्त का यश बढ़ाने के लिए, यशोदा मैया का। दूसरा कारण कि भगवान प्रेमा भक्ति की उत्कृष्टता को स्थापित करना चाहते हैं, कि भगवान की प्रेमा भक्ति में कितनी शक्ति है। कृष्ण आकर्षणीय है, वो कृष्ण को भी आकर्षित कर देती है और कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। और तीसरा कारण इस लीला को करने का कि भगवान अपने समर्पित भक्तों के वचनों को हमेशा सत्य साबित करते हैं। नारद मुनि ने श्राप दे दिया नल कुबेर और मणिग्रीव को कि तुम बहुत ही तुम्हें कोई संकोच नहीं है, नग्न अवस्था में घूम रहे हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। और जब उन्होंने और प्रार्थना की, चलो ठीक है, नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बन जाओ और कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। कोई भी योग्यता नहीं थी नल कुबेर मणिग्रीव की, वो तो अपराध कर रहे थे नारद मुनि के प्रति, लेकिन नारद मुनि ने करुणावश उनको ऐसा श्राप दे दिया जिससे उनका उद्धार होगा, तो इसलिए भगवान ने उनका उद्धार किया। तो ये दामोदर लीला। और देखिए ये लीला ऐसी है कि जिसमें एक भक्त अपने प्रेम से भगवान के शरीर को बांध रहा है और दूसरा भक्त नारद मुनि अपने समर्पण से भगवान के मन को बदल रहा है। भगवान अपने भक्तों पर ऐसी कृपा नहीं करते, उसके कुछ योग्यता तो होनी चाहिए, कुछ साधना तो की हो। नल कुबेर मणिग्रीव की क्या साधना थी, अप्सराओं के साथ नंगे नहा रहे थे, बस नारद मुनि के उनको दर्शन हो गए और नारद मुनि के प्रति भी अपराध किया, लेकिन नारद मुनि ने उनका ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन भगवान ने बोला मेरे भक्त ने ऐसा बोला है तो इसके वचन को सत्य करना है। तो इसलिए पूरा महीना ये लीला मनाई जाती है, पूरा महीना। बाकी सारे जो उत्सव हैं एक एक दिन के हैं, दिवाली का उत्सव, गोवर्धन पूजा का उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव एक एक दिन के हैं, लेकिन ये दामोदर मास यशोदा दामोदर की लीला का उत्सव पूरा महीना मनाया जाता है। पूरा महीना यशोदा मैया का गुणगान हो रहा है और पूरा महीना भगवान को बांध के रखा हुआ है बांध के उनकी आरती उतार रहे हैं ना, और ये नहीं कि भगवान भी दुखी हैं, खोलो मुझे नहीं, भगवान भी आनंद में है और भक्त लोग भी आनंद में है। तो ये लीला है। तो ये लीला शुरू हुई विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी के जन्मदिन, ये दिन था दिवाली का दिन। एकदा, जैसे हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, एक दिन एकदा एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ? गृह दासीशु यशोदा नंद गहिनी, जितनी भी घर में दासियां थी वो क्या कर रही थी, कर्मांतर नियुक्तासु, वो दूसरे कामों में नियुक्त थी। मेन काम क्या था, निर्ममंथना, जो दधि को मंथन करना था वो नहीं, वो क्या थी, दूसरे कामों में नियुक्त थी। और यशोदा कौन है, नंद गृहिणी, नंद महाराज की रानी है। नंद नाम भी क्यों पड़ा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, भगवान इस संसार में अवतरित हुए तो नंद महाराज मुख्य माध्यम बने, और भगवान का नाम है आनंद, परम आनंद को जो इस संसार में लाए वो बने नंद, उनका नाम पड़ा नंद। और नंद की रानी है यशोदा, लेकिन वो क्या कर रही है, स्वयं निर्मंथम स्वयं दही दधि, वो स्वयं दही का मंथन कर रही है, किसी दासियों से नहीं। यशोदा महारानी है, किसी दासी को भी बोलती वो दही मंथन करने लगती। लेकिन आज एक दिन दिवाली के दिन यशोदा मैया ने सोचा आज मैं खुद मंथन करूंगी दही का। क्यों भाई? प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन यशोदा जी के पास गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी कि अपने बालक को समझा लो, ये बहुत उद्दंड हो गया है, हमारे घर में आता है, माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, और कुछ नहीं मिलता तो बच्चों को चूंटी मार के भाग जाता है, और कुछ नहीं होता और गुस्सा आता है तो हमारे आंगन में मलमूत्र त्याग के चला जाता है, ये कैसा तुम्हारा बालक है। तो यशोदा मैया कहती थी कोई प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ, तो मिलता नहीं था, भगवान सब चोरों में शिरोमणि, कोई प्रूफ ही नहीं मिलता था, तो कैसे करें। तो लेकिन डेली यानी एक दिन की बात है, प्रतिदिन। तो यशोदा मैया सोचा कुछ तो सत्य होगा इसमें, तो उन्होंने काफी आत्मविश्लेषण किया तो मालूम चला हाँ ये हो सकता है जो सखियां मेरी दासियां बनाती हैं ये दूध को जला देती होंगी, हमारा जो मक्खन इतना उत्कृष्ट नहीं होता होगा इसलिए भगवान को दूसरे घर में जाना पड़ता है, आज मैं खुद बनाऊंगी ना देखती हूँ। और दूसरा कारण यह है कि सबको लगा दिया, क्योंकि अगले ही दिन इंद्र का यज्ञ है, उस समय तक गोवर्धन पूजा शुरू नहीं हुई थी, तो इंद्र के यज्ञ की तैयारियां करनी है, तो सब दासियों का लगाया तुम सारे यज्ञ की तैयारियां करो, मैं आज खुद भगवान अपने पुत्र के लिए दही मंथन करके बढ़िया सा मक्खन बनाऊंगी। तो स्वयं लगे, तो स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, रानी होते हुए भी खुद लगी भगवान की सेवा में। तो जब भी भक्तों को भगवान की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर स्वयं करना चाहिए, कई बारी हमें स्वयं ना करके डेलीगेट करने की आदत पड़ जाती है, मैनेजमेंट करते करते हम इतना दक्ष हो जाते हैं, चलो ये काम उसको बांटा, ये उसको बांटा, हम आराम से चलो हरि बोल सो गए आराम से, फिर थोड़ा सा रिपोर्ट लिया हो गया ठीक चलो फिर रिलैक्स, नहीं। ऋषिकेश ना ऋषिकेश सेव्या भक्ति उच्चते, भक्ति में अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है अपने शुद्धिकरण के लिए, और सेवाओं के विस्तार के लिए हमें डेलीगेट करना है, यानी कि हम डेलीगेट करके खुद हो जाए ना। प्रभुपाद ने बोला हमें लेजी इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेजी इंटेलिजेंट का मतलब यानी लेजी हो जाए, लेजी इंटेलिजेंट ब्राह्मण का गुण है कि बैठे बैठे सबको घुमा रहा है लेकिन खुद भी कुछ कर रहा है ना। तो स्वयं लगे, और सेवा करना ही प्रेम का लक्षण है ना, आई लव यू बोलने से नहीं, प्रेम प्रदर्शित होता है सेवा से। एक बारी श्रोता कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी के निज सचिव थे प्राइवेट सेक्रेटरी, वो जहाँ भी जाते थे प्रभुपाद जी के साथ तो एयरपोर्ट पे भक्त लोग आते थे प्रभुपाद को रिसीव करने, और इतने उत्साह से नाचते थे जय प्रभुपाद कीर्तन करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, प्रभुपाद को देखते ही रोना शुरू कर देते थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने सोचा कितना प्रेम है इन सबके हृदय में, मैं तो प्रभुपाद के साथ ही रहता हूँ हमेशा, मेरे आंखों में कभी आंसू आंसू नहीं आए, मैंने ऐसे भाव प्रदर्शित नहीं किए, तो बड़ी उनको ग्लानी हो रही थी, धिक्कार है मुझे कोई प्रेम नहीं है प्रभुपाद के लिए। तो उन्होंने बोल दिया प्रभुपाद से, मसाज कर रहे थे प्रभुपाद की, बोल दिया प्रभुपाद आई डोंट हैव एनी लव फॉर यू, बाकी मैं देखता हूँ अपने गुरु भाइयों में इतना प्रेम है आपके लिए, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं कभी ऐसा नाचा गाया नहीं, कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया। तो प्रभुपाद उस समय चुप रहे, बाद में प्रभुपाद ने स्नान किया, तिलक लगाया, गायत्री की, और फिर बोला कि तुम जो मेरी सेवा करते हो तुम्हें अच्छा लगता है, कहते यस प्रभुपाद। प्रभु कहते हैं वेरी गुड, दिस इज द साइन ऑफ लव, ये सेवा करना ही प्रेम का लक्षण है ना। बाकी लोग तो बहुत नाच रहे हैं गा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन असली प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है, सेवा करके। तो कितना हम भगवान के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं, सेवा करने को तैयार हैं, ये इससे मालूम चलेगा हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितना आकर्षण विकसित हुआ। तो स्वयं लगे, और दूसरा कैसे लगे, सेवा करने के पीछे भी सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सेवा का भाव, सर्विस एटीट्यूड। सेवा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। तो यशोदा मैया ऐसा सेवा करना चाहती है कि कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने में, गुरु को संतुष्ट करने में, ऐसी सेवा। तो बोली ऐसा माखन बनाऊंगी, ऐसा माखन बनाऊंगी जो कहीं नहीं मिलता होगा। तो क्या किया, नंद महाराज के पास कितनी गायें होती हैं, 9 लाख। 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना। देखिए 9 लाख गायें हम गिनती करें कितनी होंगे, इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें से 8 अच्छी गायों को चुना और फिर 8 अच्छी गायों को विशेष सुगंधित घास खिलाई गई। ये घास ऐसी सुगंधित थी, इसको खाने से दूध में कमल की खुशबू आती थी, को बोलते थे पद्म गंध घास, है ना। तो ऐसी 8 गायों को पद्म गंध घास खिलाई गई और उनसे पद्म कमल की खुशबू आती थी। और फिर इन 8ों गायों में से 1 गाय को और चुना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इन 7ों गायों को जो पद्मगंध घास खिलाई गई उसका दूध निकाला गया, उन 7ों गायों का दूध इस 8वीं गाय को पिलाया जाता था और इस 8वीं गाय से दूध निकाल के कृष्ण के लिए माखन बनाया जाता था। क्या क्या इक्वेशन है 9 लाख गायों में से 8 चुनी, 8ों को कौन सी घास खिलाते थे, पद्मगंध, और 8ों में से भी 7 को खिलाई जाती थी, उनका जो दूध निकलता था उस दूध को इकट्ठा करके 8वीं को पिलाते थे। और जब 8वीं गाय को मालूम चला कि मेरा यह सौभाग्य है कि मेरा दूध कृष्ण को पिलाया जाएगा, वो भरपूर मात्रा में दूध देती, जितना दूध लो उसके हृदय में इतना प्रेम आया था कृष्ण के लिए, बहुत दूध देती थी। और उस दूध को इकट्ठा करके आज यशोदा जी क्या कर रही हैं, उसको पहले उबाला, फिर उसकी दही बनाई और फिर उसको मंथना करना है, मैं खुद करूंगी। तो अटेंशन टू डिटेल्स इज साइन ऑफ लव। कितना हम डिटेल्स में जाते हैं सेवा की, वो दिखाता है कि कितना हमारा प्रेम है। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे कुछ उपहार देना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल में जाना चाहिए, इसको क्या चीज भाएगी, कौन सी चीज इसके हृदय को प्रसन्न करेगी। उस उपहार की कोई कीमत की वैल्यू नहीं है, उसको कितनी आवश्यकता है, कैसे उसको संतुष्टि होगी। शिला प्रभुपाद जब विदेश से पहली बारी भारत में आए और भारत से वापस जा रहे थे तो अपने शिष्यों के लिए विशेष विशेष उपहार ले गए। गोविंद दास जी जो प्रभुपाद की सेक्रेटरी बने, उनके लिए विशेष साड़ी ले गए पर्पल कलर के, और गोविंद दास जी देखकर हैरान हो गई, प्रभुपाद को कैसे मालूम चला ये मेरा फेवरेट कलर है। प्रभुपाद को हर शिष्य के बारे में मालूम था इसका फेवरेट कलर कौन सा है, और उसके लिए वो उपहार लेकर गए। तो इससे मालूम चला वो उनके हृदय को छुई ये बात कि प्रभुपाद हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो इसलिए अटेंशन टू डिटेल्स, कितनी डिटेल्स में गई यशोदा मैया कि सेवा तो करनी है लेकिन ऐसे नहीं औपचारिकता के लिए सेवा नहीं करनी, चलो जी बोला कुछ कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, पूरा हृदय देके। तो हम जब सेवा करें भगवान के लिए पूरा हृदय देने का प्रयास करें तो फिर हमें भी संतुष्टि होती, क्योंकि हमें क्यों संतुष्टि होती है, क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं। और आधे हृदय से हम करेंगे तो किसी को भी संतुष्टि नहीं होती। तो यशोदा मैया ने स्वयं लगी, घर की महारानी है लेकिन कृष्ण की अब सेवा आ रही है तो स्वयं दही मंथने लगे। अब सही दही मंथनी है तो क्या कर रही है, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधिर मन निर्मंथने काले स्मरंती तानी गायत। अब केवल गाय नहीं, हम देखेंगे पूर्व काल में ऐसा हो देखा होगा, जो लोग 40 साल से ऊपर होंगे अपने माताओं को या दादी माताओं को देखा होगा कि घर में खुद काम करती थी, है ना। कितने लोगों ने अपने घर में चक्की पीसे दिखा किसी को, अरे पीसी भी है, वेरी गुड, हमने भी देखा था, करते थे कभी कभी चक्की। अब जब चक्की पीसती है तो अक्सर हम देखते हैं माता ये लोग साथ साथ में कुछ गाती थी, है ना। तो ये देखते हैं, ये सीधा आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जब हम लोग अपने हाथ से कुछ काम करते थे उसमें ज्यादा आनंद आता था और आनंद से व्यक्ति गाना शुरू कर देता था। और आजकल सेंस ऑफ अर्जेंसी अर्जेंसी अर्जेंसी, मिक्सी में घर घर कर रहे हैं, कोई आवाज गाने की इच्छा होती है किसी की, कोई गाने की इच्छा नहीं होती, खट 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 मशीनें, सब चीजें उग्र हो गई हैं, किचन भी उग्र बन गया है एकदम। और अब तो ऐसा हो गया है मुंबई वगैरह शहरों में अब किचन घर में बनाते नहीं, बोले है ही नहीं कुछ जरूरत, इन किचन क्यों जरूरत है ना, सीधा स्विगी है बोला फोन करो आ जाएगा, किचन की आवश्यकता ही नहीं। तो कहां प्रेम, कहां कुछ वो, और किचन भी है तो उसमें मशीनें ही मशीनें हैं, तो कोई प्रेम आता ही नहीं है, सब कुछ इतना ही पर्सनल हो गया। लेकिन जब वो अपने हाथ से हम कुछ करते थे तो क्या होता था, हृदय प्रसन्न होता था और अपने आप गीत निकलता था। तो वो भगवान के लिए दही मंत्री हैं, तो क्या हुआ, हृदय से गीत निकल रहे हैं। कौन से गीत निकल रहे हैं, बाल चरितानि च, कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, पूतना का वध किया, त्रिनामत का वध किया, शक्टासुर का वध किया। तो जैसे ही कृष्ण एक लीला करते थे, व्रज के कवि उसको कविता बना देते थे और पूरे व्रज में वो फैल जाती थी और सब गाते थे उसको। और कई बार यशोदा मैया खुद अपनी कविता रचती थी, तो वो उसको कविता गाती रहती थी, है ना। तो कितना सुंदर तरीका है कार्य करने का, है ना। तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरण युद्धेच्छ। जी गोस्वामी पाद बोलते हैं, कोई भी कार्य शुरू होने से पहले अगर उसको हम भगवान को समर्पित कर दें तो वो भक्ति बनती है। कार्य समाप्त हो गया, उसके फल को अर्पण करना वो ठीक है, निष्काम कर्मयोग हो गया, ठीक है। लेकिन कार्य को शुरू करने से पहले उसको समर्पित किया तो क्या बन जाती है, भक्ति बन जाती है। जिसको हम अपना सकते हैं, कुछ भी करें, चैंटिंग शुरू करने से पहले क्या बोलें भगवान को, भगवान ये आपकी सेवा, ये मैं जप कर रहा हूं आपकी सेवा, इस सेवा को स्वीकार कीजिए। श्रवण करने बैठ रहे हैं, प्रार्थना करें, वक्ता तो हृदय से प्रार्थना करता ही है, भैया इज्जत बचा लेना, मैं आपका सही सही गुणगान कर सकूं, सही चेतना के साथ, सही भाव के साथ। लेकिन श्रोता को कुछ स्टेक पे नहीं होता श्रोता सो भी सकता है, थोड़ा इधर भी सो सकता है, स्मार्टफोन भी देख सकता है, उसके कोई स्टेक्स नहीं है। बोलो जो कहना, जो अच्छा लगा हंस लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जाने दो ऊपर से इधर से, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें हम बैठे इस भाव से कि मैं श्रवण कर रहा हूं भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए, आप प्रसन्न होना, तो भक्ति बन जाएगी, सेवा बन जाएगी। भगवान के लिए भोग बनाने वाले हैं, प्रार्थना करें भगवान आपको मैं प्रसन्न कर सकूं, केवल इतना है, बस इतना भाव लाना है, वो सेवा बन जाती है। थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे हम अपने हर कार्य को भक्ति बना सकते हैं। ऑफिस भी जाएंगे, फैक्ट्री भी खोल रहे हैं, भगवान आपकी सेवा के लिए इसको मैं समर्पित कर रहा हूं, बस खत्म। बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपकी सेवा के लिए मैं पढ़ सकूं, बस इस भाव को अनुकूल करने का प्रयास करें। यशोदा मैया दिखा रही हैं कार्य करने की कला, हर कार्य को हम कैसे भक्ति बना सकते हैं। देखिए जब हम सेवा करते हैं तो इन भौतिक इंद्रियों को तो बड़ी आसानी से हम लगा लेते हैं, चलो जी बोला है लगाना पड़ेगा। असली बात है किसको लगाना, मन को लगाना, तभी ये कृष्ण भानाभावित आंदोलन है, तभी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को लगाना है। और ये पूरा आंदोलन ही अपने मन को परिवर्तित करने के लिए है ना, मन को प्रशिक्षित करने के लिए है। और ये प्रतिदिन हम प्रशिक्षण लें, प्रति समय हम मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें, और यही साधना भक्ति का उद्देश्य है। स्मरन्ते सततम् विष्णु विस्मृत्य न जातो चेत् सर्वविधि विधि निषेध इत्येव किंकरा ना। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी बताते हैं अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में कि जो मन का प्राण है कृष्ण का स्मरण है, मनेर प्राण कृष्णेर स्मरण, मन का जो जीवन है वो कृष्ण का स्मरण है। एक व्यक्ति अगर अपने प्राण छोड़ देता है तो उसके ऊपर खाने के लिए मक्खियां भी आती हैं, गिद्ध भी आते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। जीवित व्यक्ति के ऊपर मच्छर भी बैठे उसको भगाता है, मक्खी भी आए उसको साइड करता है, लेकिन व्यक्ति मृत हो जाए, मृत के ऊपर कोई भी आक्रमण कर दे, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जैसे ही मन से कृष्ण का स्मरण जाता है, सब भौतिक इच्छाएं आती है, था काम क्रोध लोभ पकड़ लेते हैं गिद्ध की तरह, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मन में कृष्ण है तो क्या है, ये सब आने नहीं देंगे, ना काम वासना आएंगी, ना लोभ आएगा, ना क्रोध आएगा। इसलिए क्या करते रहना हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हमें प्रयास करना है। हम आपको चेक करें, कोई भी मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ, भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। कोई भगवान के चरित गायन नहीं कर सकते, कुछ लोगों को नहीं गा सकते, तो क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छे वैष्णव गीतों को याद कर सकते हैं, श्लोकों को याद कर सकते हैं, है ना। ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ नहीं है, भगवान के गीत गाते गए, कीर्तन करते गए, श्लोकों का उच्चारण करते गए। इस ढंग से हमेशा मन के द्वारा हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और यही भक्ति। अगर अन्यथा मन में कैसे विचार आएंगे, इस संसारिक विचार आएंगे, काम वासना आएंगे। तो यशोदा मैया सिखा रही हैं, दिवाली के दिन वो दही मंथरी हैं, साथ साथ में कृष्ण के चरित्र का गुणगान कर रही हैं, मन से स्मरण कर रही हैं, जीवा से गुणगान कर रही हैं और शरीर से मंथन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्षोमम वासा प्रथुकृत कटी तटे विभ्रति सूत्रनधम। क्षोमम वासा, कैसे कपड़े डाल रखे हैं उस दिन उन्होंने, उन्होंने डाल रखे केसरी और पीला। देखिए बिल्कुल संजोग की बात है, अपने मन वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और कपड़े भी कौन से डाले हैं, भेगुआ वस्त्र डाले बिल्कुल सन्यासियों की तरह, है ना। सन्यासी भी जब दंड लेते हैं तो क्या, मनसा वाचा कर्मणा, त्रिदंड, अपने आप को दंड देते हैं कि मैं अपने मन वाणी और शरीर को हमेशा भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो यशोदा मैया भी पूरे मन वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में। और उस दिन यशोदा मैया क्योंकि उत्सव था बहुत जल्दी उठ गई थी, दिवाली का दिन था, वो बोले आज तो बहुत हलचल मचेगी घर में तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी उठ के लिए पहले कृष्ण के लिए माखन बना देती हूँ। एक बार कृष्ण उठ गया तो पूरा दिन समय नहीं मिलेगा, है ना। तो प्लानिंग ऐसे भक्त लोग भी करते हैं, आज उत्सव है तो जल्दी उठ जाओ, पहले अपना साधना कर लो, फिर तो पूरा दिन सेवा ही सेवा है। तो एक बार कृष्ण उठ गए तो सारा हलचल मची रही, ये भाग दौड़ होगी, तो ये प्लानिंग करते हैं भक्त लोग। यानी कि गोपियों का भी मॉर्निंग प्रोग्राम होता था सुबह सुबह मक्खन बनाना, है ना। तो सुबह सुबह हो गए बड़े तसल्ली से, भगवान सो रहे हैं, मैं लगाऊं। तो क्या हुआ, अब गा भी रही हैं और साथ में कमर बंद, बिल्कुल कमर कस के, यहाँ पे अपनी उनकी मोटी कमर थी, सूत्र निधम सूत्र बांध लिया। और पुत्र स्नेह सुनुत कुछ युगम जात कंपन च सुब्रहु, और पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध का प्रवाह हो रहा है और जात कंपम, और ऐसे हिल रही हैं तो स्तन भी हिल रहे हैं। सुब्रहु, और उनकी भौमें बहुत सुंदर हैं। और क्या हो रहा है, रज्जावकाशम श्रम भुज चलत कंकड़ों, अब उस रज्जा को रस्सी को खींच रही हैं, ऐसी मेहनत कर रही हैं, जो हाथों में कंगन डाले हुए हैं वो भी साथ में ध्वनि कर रहे हैं। कंगन भी देखिए, आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन है, कोई जड़ नहीं है। तो कंगन उन्होंने सोचा, ये गोपी इतनी मेहनत कर रही है और इतना गुणगान कर रही है भगवान का, चलो हम भी संकीर्तन में जुड़ते हैं, है ना, हम भी अपना कुछ काम करें। तो वो छन 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 वो भी साथ में बजने लगे करताल की तरह, है ना। और कुंडलेच, और कुंडल भी डाले हुए थे, वो भी झूमने लगे। यशोदा मैया भी हिल रही है, कुंडल भी हिल रहे हैं, कंगन भी हिल रहे हैं और आवाज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, स्विनम वक्त्रम। जीव गोस्वामी पाप बताते हैं कि यशोदा मैया की कांति कैसी थी, वो भी ब्लैकिश थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। स्विनम वक्त्रम, और उनके बादल समाल काले बालों से वर्षा की बूंदों की तरह पसीना टपक रहा था और पूरा पसीना मुख पसीने से भरा हुआ था। और कबर विगल गलित मालितम निर्मंथम, और जब उनके सर पे जो बाल थे उन्होंने सोचा, क्या अधिकार है यार, हमें इतनी अच्छी सेवा कर रही है भगवान की और हम इसके सर पे चढ़ के बैठे, इसके तो पांव छूने चाहिए, तो फूल जो है नीचे गिर रहे थे। तो कितना सुंदर दृश्य है, भेगुआ वस्त्र की साड़ी डाली हुई है, पूरे शरीर को हिला रहे हैं, कंगन में छन छन कर रहे हैं, पसीने से भर गई पूरी, और बाल भी बालों पे जो फूल हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो शीला प्रभुपाद बोलते हैं, अगर किसी को भी भगवान से वात्सल्य रस में सेवा करनी है तो यशोदा मैया के इस दृश्य का स्मरण करना चाहिए कि कैसे यशोदा मैया भगवान की सेवा करती थी। तो यहाँ तो यशोदा मैया आंखें बंद करके भगवान का गुणगान कर रही है और यशोदा मैया का ये मधुर कीर्तन दूसरे कमरे में पहुंचा जहाँ भगवान सो रहे हैं। ये मंगल आरती से पहले की बात है ना। तो अब हो गया समय, हो गया भगवान को, अब जब पहुंचे ये कीर्तन पहुंचा तो भगवान की नींद टूट गई। और फिर भगवान ने देखा, रोज तो वो जब विष्णु सोते थे मैया का आलिंगन करते हुए सोते थे, आज मैया है नहीं तो क्या करें, अब उनको दूध पीना है। ताम स्तन्य काम आसादया मंथरंती जननी महरे, स्तन्य काम हो गए भगवान। स्तन स्तन्य, स्तन्य मतलब स्तन से दूध जो निकलता, उसकी कामना करने लगे। हम इस लीला में देखेंगे कि भगवान अपनी भगवत्ता को कैसे तिरस्कृत करते हैं। आठ अपने गुणों को भगवान निकाल देते हैं, पहला गुण यहां नकार रहे हैं। भगवान आत्मा राम है, अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अब वो क्या बन रहे हैं, स्तन्य काम बन रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के लिए बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन भगवान को किसी वस्तु पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो तो दूसरों की कामनाओं को इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आज खुद उनके अंदर कामना जागृत हो रही है। स्तन्य कामन, दूध पीना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया, दूध पीने की इच्छा से वो चलते चलते यशोदा मैया के पास आए, और पास आकर उन्होंने क्या किया, गहित्वा दधि मंथा नाम, जो दधि मंथन करने की वो छड़ी थी जही जैसे मंथन हो रहा था उसको पकड़ लिया है ना, और बोला नहीं इसको बंद कर दो आप, बस नहीं करना। और तो यशोदा मैया की आंखें बंद थी, वो तो रस्सी से खींच रही थी ऐसे, उसको अचानक हो गया जाम होगी मंथनी, तो देखा तो बड़ी खुश हुई कि देखो मेरे बालक में कितना बल बढ़ गया है, मैं इतने जोर से खींच रही हूँ, थक से आके रोक दिया और चली नहीं रही, मैं खींच रही हूँ बड़ी रही, वाह वेरी गुड। और भगवान ये बताना चाह रहे हैं बहुत मेहनत हो गई तुम्हारी साधना कंप्लीट। किसके लिए साधना कर रहे थे, मेरे लिए आ गया मैं, है ना। और आचार्यगण बता रहे हैं जो वो जिससे जिस बिलोने में वो कर रही थी दही थी, उसको अगर समझेगा सारे वैदिक साहित्य हैं, और उसके अंदर की जो दही है उसको समझे वो सारा वैदिक ज्ञान है, और जो मंथनी है अगर वो बुद्धि है तो बुद्धि से सारे वैदिक ज्ञान का मंथन करेंगे तो सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है, वेदेशु सर्वेशु अहमेव वेद्य, सभी वैदिक शास्त्र मुझे जानने के लिए हैं, तो मैं तो आ ही गया, अब इस बुद्धि को चलाना बंद करो ना, मैं आ गया हूँ। तो यशोदा मैया ने देखा ठीक है, देखिए बोला आ जाओ आपको मैं फिर स्तनपान कराती हूँ। तो यहाँ देखिए यशोदा मैया का सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना। यशोदा मैया जल्दी उठी थी कि सारा काम निपटा लूं, एक और एडहॉक सर्विस आ गई, भगवान बोले ने पहले दूध पिलाओ, हो जाता ना कई बार हमारे साथ, हम पूरी प्लानिंग करते हैं आज निर्जला एकादशी या ढाई बजे उठ के पहले माला शुरू कर दूंगा, आपने सुबह माला शुरू की ऊपर से कोई आगे प्रभु पहले ये सेवा कर दो, मूड खराब हो जाएगा, प्रभु जी क्या सुबह सुबह पकड़ लिया। तो नहीं यशोदा मैया अब आ गई है, नहीं सेवा भी किसकी प्रसन्नता के लिए, इन्हीं की प्रसन्नता के लिए। तो क्या क्या हो गया, तम आंकम आरूढ़ अपाय स्तनम, वो उनकी गोद में बैठ गए और फिर यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराना शुरू किया। और जब स्तनपान करा रही हैं तो यशोदा मैया के पास के हृदय में असीमित प्रेम है भगवान के लिए, और उस असीमित प्रेम से असीमित प्रवाह हो रहा है दूध का, और भगवान की भी असीमित भूख है प्रेम की, और भी असीमित रूप से वो पिए जा रहे हैं। तो यशोदा मैया देख रही है उनको, सास्मित इक्षति मुखम, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आचार्यगण बता रहे भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारा काम बंद करवा दिया ना मैंने, मैं जीत गया है ना, मैं मुस्कुरा रहा हूँ ठीक है अब मैं। और यशोदा भी उनके मुस्कुराहट को देखे, यशोदा भी मुस्कुरा रही हैं और उनको स्तनपान करा रही हैं, लेकिन स्तनपान करा रही हैं वो दूध पी रहे हैं तब भी वो तृप्त नहीं हुए, अतृप्त ही हैं कृष्ण। भक्ति की ये बड़ी मुख्य बात है कि भक्ति में भक्त हमेशा अतृप्त ही रहता है और भगवान भी अतृप्त रहते हैं। इस संसार में कोई चीज़ हमें पसंद है, समोसा खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, कितने खा लेंगे उसके बाद हम तृप्त हो जाते हैं, नहीं और नहीं चाहिए बस। आप देखेंगे किसी भक्त ने खूब प्रसाद पा लिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, वो शांत होते हैं, और दूसरा भक्त आया सारा प्रसाद खा लिया होगा उसका चेहरा अलग से होगा हमें। और जिसने पूरा प्रसाद पा लिया होगा क्यों यार इतना चिंतित क्यों, क्या उसको भूख लग रही है। लेकिन भक्ति में हम जितनी मर्जी सेवा कर लें, जितना मर्जी हरि नाम ले लें, भक्त हमेशा अतृप्त रहता है। भक्ति में कृष्ण के लिए हमेशा तृष्णा बनी रहती है, अगर बोले बहुत हो गया प्रभु जी, अब कब माला बंद करनी है बताओ, कितने साल करनी पड़ेगी माला? गुरु जी के साथ दीक्षा ली थी, कोई कॉन्टेक्ट तो होगा, लिमिटेड हर चीज का कोई टाइम पीरियड होता है, नहीं अतृप्त है। तो यशोदा मैया स्तनपान कर रहे हैं, भगवान पी रहे हैं, और वो अतृप्त अवस्था में ही थे, तभी वहां पे क्या हुआ, ये माँ और बेटे का तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, और वहां पे यशोदा मैया मल्टीटास्किंग कर रही थी, यहाँ दही मंथन कर रही थी, वहां पद्म गांध गायों का दूध उबाल रही थी कि उससे मैं कुछ और मिठाई वगैरह बनाऊंगी। तो उस दूध ने देखा, दूध भी चेतन है, बोले यहां अच्छा चल रहा है इनका प्रेम का आदान प्रदान, मेरे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है सेवा का, क्योंकि कृष्ण तो असीमित भूख है, पीते रहेंगे, और यहां असीमित सप्लाई या सप्लाई होती रहेगी, तो मेरा क्या होगा, मैं यहां पे तप रहा हूं ऐसे, मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो भगवान की सेवा में नहीं लग सके, मैं आत्महत्या कर लेता। तो दूध उबलने लगा और अग्नि में गिरने लगा, है ना, जैसे सनातन गोस्वामी पाद जब आ रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में झारखंड के जंगलों से आए, तो उनके शरीर में तरह तरह के घाव हो गए, पस पड़ गई, खून निकलने लगा, तो बोले एक शरीर किस काम का, अब रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करके रथ के नीचे अपना शरीर दे दूंगा, समाप्त, है ना, तो ये शरीर काम का नहीं है। तो दूध ने सोचा मेरा शरीर तो बेकार है, जीवन समर्पित करो। लेकिन जैसे यशोदा मैया ने देखा अरे दूध उबल रहा है, नीचे गिर रहा है, उसने क्या किया, कृष्ण तुरंत उतार के फेंक दिया, गोद से नीचे उतार दिया, और भाग के वहां पे गई उस दूध को बचाने के लिए। तो क्या करना चाहिए था मैया को, गोद में कृष्ण है, वो मुस्कुरा रहे हैं, यशोदा भी मुस्कुरा रही है, लेकिन सामने दूध उबल रहा है, यशोदा जी ने कृष्ण को नीचे रख दिया, वो कृष्ण अतृप्त अवस्था में। तो भक्तों के सामने भी कई बार ऐसे संकट आ जाते हैं, एक सेवा करने एक अथॉरिटी ने दूसरी अथॉरिटी को दूसरी सेवा दे देती है, कौन सी सेवा पहले करूं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति जो है बहुत डायनेमिक है, भक्ति स्टीरियोटाइप नहीं है, पहले ये सेवा कर लो फिर ये कर लेना फिर ये कर लेना, नहीं, हम जितनी मर्जी योजनाएं बनाएं कुछ ना कुछ इमरजेंसी आती रहेगी, पहली इमरजेंसी तो ये आ गई, उन्होंने सोचा मैं जल्दी उठ के दूध मक्खन बनाऊंगी, भगवान जागे नहीं पहले दूध पिलाओ, उनको दूध पिलाने लगे, दूध पिलाने लगे, जो दूध पद्मगंध गायों का इतना मुश्किल से इकट्ठा किया था वो उबल के नीचे गिरने लगा, अब उसको भी बचाना है, तो कौन सी सेवा पहले करनी है कौन सी सेवा बाद में करनी है, भगवान कहते हैं अगर भक्त सिंसियर है तेषां सतत युक्ता नाम, शिला प्रभुपाद बताने तात्पर्य भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमान उपयंती थे, कोई हमेशा भगवान की सेवा के बारे में स्मरण करे सेवा में युक्त है तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। और यहां से हम ये भी देखते हैं कि भगवान से बढ़कर भगवान की सेवा है, भगवान से बढ़कर भगवान की सेवा है, कृष्ण को नीचे रखा, लेकिन कृष्ण वो दूध भी किसके लिए था, यशोदा मैया ने अपनी बुद्धि लगाई, मैं तो अपना दूध पान इसको कभी भी करा सकती हूं, लेकिन ये जो दूध इकट्ठा हुआ है इसको बचाना चाहिए, ये भी तो कृष्ण की सेवा में लगेगा, इसको सेवा करनी चाहिए। और दूसरा, जो दूध भी एक सेवक है भगवान का भक्त है, वो भक्त डिप्रेस हो गया, वो तो आत्महत्या के कगार पे आ गए, तो मैं भगवान को देखूं पहले भक्त को बचाऊं, चलो पहले भक्त को बचाती हूँ, भगवान को मैं दूध बाद में सेवा कर लूंगे, तो उनको भागी यहाँ पे। तो शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में है राधा दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर छोड़कर पूरे व्रज का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में गए, बावरी स्ट्रीट जैसे गंदी जगह पे गए, लेकिन वहां भी उन्होंने उसको वैकुंठ बना दिया, पूरे संसार में व्रज की महिमा का प्रचार करने के लिए उनको व्रज को छोड़ना पड़ा। तो कई बारी भगवान की सेवा करने के लिए हमें भगवान से दूर भी होना पड़ता है, लेकिन भगवान की सेवा अंततः भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से वो दूध छोड़कर भगवान को छोड़कर वो दूध बचाने जाती हैं, और भगवान अतृप्त अवस्था में है, तो भगवान को क्या हुआ, तो अब भगवान अतृप्त हैं, तो यहां उन्होंने अपना दूसरा गुण को त्यागा, भगवान हमेशा का, भगवान का एक गुण है आप्त काम, जिनकी सारी कामनाएं हमेशा पूर्ण रहती हैं, तो वो अब वो अतृप्त अवस्था में है क्योंकि दूध की प्यास पूरी नहीं हुई, ये भगवान अपनी भगवत्ता को नकार रहे हैं, तो भगवान अतृप्त है। कौन सा पहला कौन सा गुण छोड़ा था, आत्माराम, अब छोड़ा आप्त काम का, और अब क्या हो गया, अतृप्त अवस्था में है, संजात कोपः, क्रोध आ गया भगवान को, क्रोध किसका लक्षण होता है? रजोगुण और तमोगुण का। भगवान त्रिगुणातीत है लेकिन भगवान को क्रोध आ गया, ये अपना तीसरा गुण उन्होंने त्यागा। संजात कोपा स्फुरित अरुणाधरम, उनके होठ कांपने लगे, इतना क्रोध, होठ कांपने लगे। और होठ कांपने लगे तो क्या किया? संदश्य दधि, अपने दांतों से होठों को काटने लगे, इतना क्रोध, इतना मेरा अपमान। एक आचार्य गण बताते हैं कि मैं क्षीर सागर में था, दूध के सागर में, वो छोड़कर तुम्हारा स्तनपान करने आया और तुमने मुझे नकार दिया, इतना इतना अपमान। तो दूध अपने दांतों से होठों को दबाने लगे और बोले अब तो मैं पूरे घर को तहस नहस कर दूंगा। बहुत क्रोध आ गया भगवान को। जैसे फिर क्या किया? भित्वा मृषा अश्रु, और आंखों से आंसू निकलने लगे, जूठे आंसू, ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे घर में कोई उनकी परवाह नहीं करता, भूखा छोड़ दिया मुझे, कितनी कठोर हृदय वाली माँ है, मेरे को स्तनपान भी नहीं कराया, सुबह सुबह मैं भूखा था, मुझे छोड़कर घर के काम में लग गई, इतना अत्याचार मेरे साथ, चाइल्ड अब्यूज है ना, पहला विश्व का चाइल्ड अब्यूज हुआ ये, मैं आराम से इमोशनली अब्यूज हो गए भगवान, एकदम इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा मेरे पे, एकदम क्रोधित हो गए भगवान, बोले अब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। और उन्होंने क्या किया? पास में पड़ा हुआ एक पत्थर था, उसको उठाया और उस मटकी को फोड़ दिया, है ना, उस मटकी को फोड़ा तो उसमें से दही और मक्खन निकलने लगा। अब निकलने लगा, अब भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, महाराज पूरे घर में तहस नहस मचा दूंगा। और बोले मैं जाता हूँ यहाँ से, है ना, मौकाए वारदात से निकलो यहाँ से, नंगे हाथ नहीं पकड़े जाना। तो बोले यहाँ से जाऊँगा, लेकिन भगवान कितने बुद्धि दिखा रहे हैं, छोटे से बालक हैं, बोले जाऊँगा तो मुझे कोई भी पीछे सबूत नहीं छोड़ना, तो मुझे ये जो दही निकल रही है इसको टापना है, तो कैसे टापूंगा, तो थोड़े से पीछे और जोर से टापे, लेकिन थाट दही के ऊपर आकर ही गिरे। देखिए वो भगवान जिन्होंने अपने दो पाँव से पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया था वामन देव के रूप में, थोड़ी सी जंप भी नहीं लगा पा रहे हैं ना, कैसे एक साधारण बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। और गए लेकिन फिर भी भगवान भागे, और भागे भागे जहाँ गए एक और घर में गए, पीछे कमरे में, वहाँ पूरा स्टोर रूम था, पिछले दिन का दूध दही मक्खन इकट्ठा किया हुआ मटकियों में। भगवान ने क्या किया? एकदम फोड़ फोड़ कर दिया सबको, पूरे द्वार पे फेंक दिया, उधर पूरा तहस नहस कर दिया पूरे क्रोध में। और फिर एक मटकी उठा ली और फिर बाहर चले गए आंगन में। ये मंगल आरती का समय था, कार्तिक का महीना था, पूरा अंधेरा ही था अभी, और बाहर चले गए आंगन में, बरामदे में कोने में एक उखल पड़ा था, उस उखल के ऊपर जाकर बैठ गए, और उखल पर जाके बैठ के चोरी चोरी मक्खन खाने लगे, अपने ही घर में चोरी। और साथ में क्या हुआ? आसपास बंदर आ गए और उन बंदरों को बांटने लगे मक्खन, लो खाओ तुम भी खाओ, क्रोध में है ना। वो उनके मंशा ये थी कि आज मैं यशोदा मैया को बता दूंगा कितना बड़ा अत्याचार किया तुमने मेरे पे, है ना, मुझे भूखा छोड़ दिया अतृप्त। यशोदा मैया ने गर्म दूध को अंगीठी से उतार कर मथने के स्थान पे आई तो देखा मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण भी वहां पे नहीं है, समझ गई कृष्ण की करतूत है। और कहां पे है? देखा कि कैसे मटकी को फोड़ा है, तो उनको क्रोध नहीं आया, है ना। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बताते हैं अपनी नासिका पे उंगली रखकर हंसने लगे, मेरा बालक कितना चंचल हो गया है और कितना बुद्धिमान हो गया है, मुझे आवाज भी नहीं आई मटकी फोड़ने की, कैसे इसने मटकी को नीचे से फोड़ा है, पूरी मटकी दही से भरी हुई थी, ऊपर फोड़ता तो दही भी बाहर ना निकलती और आवाज भी आ जाती, पूरा काम ऐसे किया ना आवाज आई और काम भी पूरा किया इसने, कितना बुद्धिमान हो गया है और कितना चंचल है, और देखो कैसे भागा है, सारे निशान दिखाई दे रहे हैं, और अंदर कमरे में जो तोड़फोड़ कर रहा है उसकी भी आवाज आ रही है, और भगवान ने कुछ पायल डाले नुपुर डाले हुए थे उनकी भी छन छन की आवाज आ रही थी, भाग दौड़ कर रहे तोड़फोड़ कर रहे, तो मुस्कुरा रहे थे, क्रोध नहीं आया था। बोले अच्छा चलो अब मैं इसको पकड़ती हूँ। तो यशोदा मैया ने क्या किया? अपने पांव के जो पाजेब थे उसको टाइट किया, ताकि इसको पता ना चले मैं आ रही हूँ। वो धीरे धीरे देखते हुए कहाँ कहाँ उसके पाँव गए गए और देखे, जब तक वो कमरे में पहुंचे तो देखकर हैरान हो गई, ये तो पूरा सत्यानाश, ये तो उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। अरे हद हो गई, इतना बड़ा सब कुछ। बोले रोज जो मुझे शिकायत आती थी बिल्कुल ठीक आती थी, मेरे घर में ऐसा कर दिया, बाहर क्या करता होगा हा? और फिर आज तो इसको सबक सिखाऊंगी। तो उन्होंने एक छड़ी उठा ली, बोले यशोदा मैया ने कभी भी छड़ी से मारा नहीं था भगवान को, और ना ही उनकी मंशा थी, बोले दिखाऊंगी इसको सबक सिखाने के लिए, मारूंगी नहीं। यशोदा मैया के हृदय में इतना स्नेह था, माना तो दूर की बात है, नहीं इसको सबक सिखाना है आज मुझे। और वो दबे पांव करके जा रहे थे, और भगवान माखन लुटा रहे थे बंदरों को, और बंदरों के तो फीस्ट हो गई सुबह सुबह, क्या बढ़िया ना। तो बंदरों को माखन क्यों बांट रहे हैं उसके आचार्यगण चार कारण बताते हैं। पहला कारण ये कि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि यशोदा मैया को मैं बहुत क्रोधित हूं, और यशोदा को दिखाना चाहते मैं बहुत अतृप्त हूं, तो बंदरों को माखन बांट रहा हूं। दूसरा, जब वानर माखन खा के थक जाएंगे तो वो भी माखन खाने से मना कर देंगे, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हारा माखन कितना बेकार है, बंदर भी नहीं खाते, तभी तो बाहर जाना पड़ता है मुझे, है ना। तो ये दिखाऊंगा सब, इसको मैं प्रूव कर दूंगा। और तीसरा बताया जाता है कि भगवान राम की लीला में बांदरों ने बहुत सहयोग दिया था, तो भगवान उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं, तब तो मैं तुम्हें माखन नहीं खिला पाया, अब खाओ जितना खा सकते हो। और चौथा कि मालूम है जो भगवान ऐसे जो माखन बांट रहे थे तो बहुत क्या था, हे अगम चौर्य विशंकित क्षणम, इधर उधर देख रहे थे, जैसे चोर व्यक्ति होता है हमेशा शंकित रहता है, संशय में रहता है कोई आके पकड़ ना ले, है ना। अगर पुलिस जाती है किसी हाथ चोरी हुई है तो पुलिस को देखते ही चोर पहले ही यूं करना शुरू कर देते हैं, तब पुलिस इसकी पिटाई पकड़ लेती है कि यही चोर है। तो भगवान ये बड़े संशय से इधर उधर देख रहे थे और साथ में माखन बांट रहे थे, बीच में खा रहे थे, तो उनको मालूम था कि माता आएगी, पीछे से आएगी, और बानर इनको देख लेंगे माता को आते हुए, तो बांदरों को देख के मैं समझ जाऊंगा माता आ गई है, ये भी डर के भागेंगे, तो बानरों खिला रहे थे। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही यशोदा मैया पीछे से आई छड़ी लेकर, और बानर पहले आराम से मस्ती से खा रहे थे, जैसे देखा पीछे से यशोदा मैया आई है, वो तो इधर भागने लगे, मालूम चल गया कृष्ण को कि आ गई है यशोदा मैया। तो जैसे पीछे मुड़ के देखा, और देखा क्या, हाथ में क्या है, छड़ी है। ओहो, तो कृष्ण बहुत डर गए, और वो जो उखल उल्टा किया हुआ था उससे उन्होंने जंप लगाई, उनके लिए बहुत बड़ी लॉन्ग जंप थी, जंप लगाई तो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, उठते खड़ते फिर भागे जोर से, और यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे उनके भाग रही है ना। इसका आगे वर्णन कैसे यशोदा मैया पकड़ती हैं, कैसे रस्सियों से बांधती हैं, इसका वर्णन फिर कल करेंगे, टाइम हो गया, क्षमा करें, सवा नौ हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।